अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतरातर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतुष्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणं कुजे। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद और स्वतः श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कपड़ों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। तत्पश्चात उपस्थित त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी गण वैष्णव वैष्णवी माताएं बहने सभी को यथायोग्य मेरा अभिवादन है। आज वर्किंग डे है इसलिए शायद अभी लोग नहीं आए किंतु धीरे धीरे 7 बजे तक शायद सभी लोग आएंगे। तो अभी मैं हम लोग अपना भक्ति का विचार जो कहना चाहते थे कुछ बतलाएंगे। मैं समझता हूं कि 3 दिन में ये सब हरी कथाएं समाप्त नहीं होती, कम से कम 7 दिन होता तो कुछ हम लोग परिवेशन कर सकते थे, किंतु हम लोगों को इधर जम्मू जाना है और इधर स्टेज भी खाली नहीं था इसलिए संभव पर नहीं हो सका। अगले वर्ष यदि संभव होगा तो 5 दिन के लिए ये लोग व्यवस्था करेंगे, तो हम लोग 5 दिनों तक जो रह गई हरी कथा हम लोग करेंगे। हरी अनंत हरी कथा अनंता, हरी की कथा अनंत है, जितना कहा जाए ये कम नहीं हो सकती, पूरा कहा नहीं जा सकता। कृष्ण भी स्वयं यदि वर्णन करें, यदि सहस्त्रान भी अपने हजारों मुखों से इस हरि कथा को कहें तो भी अनंत काल में ये हरि कथाएं समाप्त नहीं होगी और उनका फल भी ऐसा ही हो। तो कल हमने भक्ति की परिभाषा बतलाकर और भक्ति के तात्पर्य के उपलक्ष्य में उसकी कड़ी में हम लोग महाराज अम्बरीश की बात बतलाई। प्रहलाद महाराज की जैसे कल बतलाया गया था, वो केवल अपने प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु को की कथा सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं उनकी महिमा स्तौ स्तुति इत्यादि और स्मरण कर सकते हैं और इंद्रियों से सेवा करने की संभावना नहीं है उनकी। किंतु महाराज अम्बरीश एक साधक भक्त होते हुए वृंदावन में बास कर और वहीं पर ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हुए सभी क्षेत्रों में गए और मन से कृष्ण की कथा का स्मरण करना वाणी से उनका गुणानुवाद करना, सिर से उनका भी वंदन करना, कान से उनकी हरि कथा सुनना, हाथों से उनका मंदिर मार्जन करना, पैर को किस काम में लगाएंगे, तो पैर को भी काम में लगा दिया, ओ वृंदावन की धाम परिक्रमा में लगा दिया। इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। होने पर भी अब इनसे श्रेष्ठ कुछ भक्तों का अब हम लोग विवरण करेंगे। आप लोगों ने महाराज चित्रकेतु का नाम सुना था, किस प्रकार से वो सिद्ध हुए और किस प्रकार से वो वित्रासुर के जन्म में आए, और वित्रासुर के जन्म में रहने पर भी उनकी भक्ति का गंध मात्र भी नष्ट नहीं हुआ, असुर हुए किंतु भक्ति की जो उन्होंने बात कही है उसमें हम सूक्ष्म रूप से विचार करने पर देखते हैं गोपियों के प्रेम का कुछ उनमें गंध है, जो अम्बरीश महाराज जी के भी चरित्र में नहीं सुना जा रहा। इस पर हमारे श्रीमान भक्ति वेदांत बन महाराज जी उनके भक्ति के ऊपर में, उनके चरित्र के ऊपर में कुछ प्रकाश डालेंगे। आज कुछ बोलेगा चित्रकेतु महाराज और उनके परवर्ती जन्म वृत्तासुर, उनकी भक्ति की बात सुनी। हम लोगों ने इस उपाख्यान को इसलिए कहा कि अम्बरीश महाराज की भक्ति की अपेक्षा भी वृत्तासुर की भक्ति का कुछ वैशिष्ट है। उनकी भक्ति में कुछ गोपियों के भावों की गंध है। प्रिय प्रिय विशुतम विषन्ना, जिस प्रकार से अपने विदेश गए हुए पति के विरह में तड़फड़ाती है, उनका गुणानुवाद करती है, उनका चिंतन करती है, और आ रहा है ऐसा जानकर के अपनी सेवा के लिए प्रस्तुत रहती है, उसी प्रकार से भक्त का भी तन मन और वचन से जितनी भी क्रियाएं हैं और उसमें भी गोपी भाव के अनुसार में यह सर्वोत्तम भावना है। इसलिए श्रीमद् भागवत में इस उपाख्यान का वर्णन किया गया, यहां पर कि वित्तासुर का उपाख्यान है। अब हम बिना भगवान नाम के कोई भी साधन फलदायक नहीं है। यद्यपि भक्ति के बहुत से अंग हैं किंतु उन सब में रसिक तत्वज्ञ अपने से अधिक श्रेष्ठ वैष्णवों के अनुगत्य में नाम करने पर वह नाम प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ को प्रदान करता है। संक्षेप में श्रीमान रसानंद ब्रह्मचारी जी नाम की महिमा के संबंध में कुछ कहेंगे। अभी हम लोगों को अभी ब्रज में पहुंचना है, उद्धव हैं, पांडव हैं, ये सब की चर्चाएं करनी है, इसलिए समय केवल एक ही व्यक्ति वक्ता नहीं है, बहुत वक्ता हैं। यही तो समझते पहले समय नष्ट हो गया, आरती हो एकदम 7 बजे। अभी इनको 8-10 घंटा भी दिया जाए तो समाप्त नहीं कर सकते। तो संक्षेप में इनकी और भी बातें थी, मैं दो एक इनका इनका वक्तव्य मैं कह देता हूं। जितने विष्णु का जो नाम है वो 10,000 बार यदि लिया जाए तो उसका जो फल है वो 1 राम नाम के बराबर होता है, और राम नाम 3 बार जो जपा जाता है तो कृष्ण नाम का 1 फल है, और वे कृष्ण क्या नाम जपते हैं? राधा जी का। इसलिए कृष्ण की भी आराध्या देवी राधिका जी का नाम है, वो राधा राधा जपकर। इसलिए एक राधा नाम में सब कुछ जितना है सब कुछ में भरा पड़ा है। अब हम लोग, समय तो बीत गया, तभी मैं संक्षेप में ये बतलाना चाहता हूं कि चित्रकेतु महाराज जी की अपेक्षा भी सिद्ध भक्तों में हनुमान जी प्रेमी भक्त कहलाते हैं। आप लोग रामायण से देखेंगे, वाल्मीकि रामायण से, तुलसी रामायण से और भी रामायणों से, किस प्रकार से हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी रहे और राम की कैसे सेवा की। इनके प्रभु को भूख भी लगती है। वनवास के समय में फल मूल कंद ला करके इनकी सेवा करते। इनके प्रभु थक भी जाते हैं, इनकी चरण सेवा भी करते हैं। युद्ध के समय में अपने पूंछ को लंबा चौड़ा बनाकर प्राचीर बना दिया, उसमें कोई घुस न सके। जब शक्ति लगी लक्ष्मण को तो हनुमान ही नहीं, पहले तो रावण का जो चिकित्सक था
सुसेन वैद्य
को घर के समय उखाड़ करके ले आए और उसके कहने से हिमालय पर्वत पर गए और वहां से बूटियों को मृत संजीवनी बूटी इत्यादि को, कौन सा है, सभी तो जल रहा है, सब पर्वत को उखाड़ दिया। और रास्ते में पड़ा था पहले उस दानों को मारा, कालनेवी को, और भरत जी के अयोध्या राज के आने पर भरत जी ने सोचा ये कोई असुर है, बाण से मारा वो गिर गए, राम राम कहते, बड़े शोकग्रस्त हो गए भरत जी। फिर भरत जी ने उनसे पूछने पर उन्होंने बतलाया किस प्रकार से युद्ध हो रहा है, उनके लिए मैं संजीवनी बूटी जा रहा हूं ले जा रहा। उन्होंने कहा हमारे बाण पर बैठिए, मैं अभी भेज दूं। उन्होंने कही नहीं, मैं अपने आप चला जाऊंगा। वहां गए सवेरे होने के पहले और संसार से उसकी चिकित्सा से लक्ष्मण जी थे, राम और लक्ष्मण दोनों को नागपाश में बांध दिया गया। मेघनाथ ने बांधा था या राम और उस समय में सवेरे होने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी, किंतु ये गरुड़ को बुला ले आए और गरुड़ जी के आने के साथ साथ में इस प्रकार से लंका का दहन किया और फिर सबंश ध्वंस कराकर और अयोध्यापुरी में ले आए। इसके बाद भी उनकी सेवा जारी रही, बिना सेवा के रह नहीं सकते। कभी राम लक्ष्मण सीता जी लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न ने उनको सब सेवाएं बंद कर दी, आपने बहुत सेवा की अब हम लोग करेंगे, कहे कोई भी तो सेवा दे दो, उन्होंने कोई सेवा नहीं दी। कहे कोई भी एक सेवा दो, तुम चुटकी बजाने के लिए हमको सेवा दे दो, मैं चुटकी बजाऊं, क्योंकि राम को कभी जम्भाई आ सकती है। उन्होंने सोचा कि राम को तो कभी जम्भाई आती नहीं, अच्छा तो तुम चुटकी बजा। हनुमान जी दिन रात चुटकी बजाने लगे, न जाने कब उनको हो जाए और उनको आने लग गई ही जम्भाई। फिर उनकी सारी सेवा बंद हो गई, अंत में राम के कहने से उनको सेवा में नियुक्त किया। बहुत सी उपाख्यान, किंतु ये हनुमान जी प्रेम से सेवा करते हैं, किंतु राम का आलिंगन नहीं कर सकते। प्रभु का सब समय यही रहेगा उनका, जो मैं मेरे स्वामी हैं, मैं इनका दास, एक थाल में भोजन नहीं कर सकते। कोई मीठी वस्तु भोजन करके फिर उसको निकाल करके कृष्ण के मुख में नहीं दे सकते। जहां सीता जी रहेगी वहां पर ये नहीं जा सकते, इसलिए पांडवों को श्रेष्ठ बतलाया गया। अभी ये लोग सब उनसे बुलवाता किंतु कम से कम 3-4 घंटा समय लगता है, इसलिए मैं स्वयं ही संक्षेप में बतला रहा हूं, क्योंकि 7:30 बजे खत्म करना है। 8 बजे के पहले हमारे ब्रह्मचारी लोगों को जम्बू के लिए जाना है, इसलिए संक्षेप में बतला रहा हूं। अगले वर्ष फिर आने पर विशेष रूप में इन कथाओं का हम परिवेशन करेंगे। इसके बाद में इनसे श्रेष्ठ लोग कौन है? पांडव लोग हैं। अर्जुन कृष्ण के साथ एक पलंग पर सोने वाले हैं, एक थाल में भोजन करने वाले हैं। इतना ही नहीं, राम ही कृष्ण के रूप में आकर और अर्जुन का रथ चलाते हैं, उनके घोड़ों को धोते हैं। अर्जुन आदेश देता है रथ को बीच में ले चलो, ले जाते हैं और उनके हनुमान को भी उनकी ध्वजा पर बैठा करके उनकी सेवा में नियुक्त कर देते हैं। अपनी बहन सुभद्रा जी की भी शादी अर्जुन से कर करके उनके साले बन जाते हैं, संबंधी बन जाते हैं। इस तरह से पांडव लोग इनसे श्रेष्ठ हैं। उनमें पांडवों में भी द्रौपदी जी और अर्जुन श्रेष्ठ हैं। उन अर्जुन को भी महाभारत के युद्ध में जब विश्व रूप दिखलाया तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, आज से आपको सखा नहीं कहूंगा, मैंने अपराध किया, अपने घोड़ों को धुलवाया, रथ चलवाया, आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मैं सखा इत्यादि नहीं आपको कहूंगा। इस तरह से प्रार्थना कर इनकी अपेक्षा जादव लोग श्रेष्ठ हैं। उन जादवों में भी सर्वश्रेष्ठ उद्धव जी हैं और जादवों की पत्नियां हैं। उनकी पत्नियां कैसी हैं, कितनी भक्तिमती हैं, ब्रज की कथाओं को उन्होंने सुना है, इसलिए जबकि कृष्ण रंगशाला में पहुंचे उस समय कुबल्या पीड़ हाथी को के दांतों को उखाड़ कर उसे मारा, रक्त के छींटे लग गए और इसके बाद में उस महावत को भी मारा, जो जो रक्षक आए उनको मारा और रंगभूमि पहुंचे। चारु मस्तिष्क और बड़े बड़े वीर पहलवान उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। कंस ने इशारा किया और उस समय में चारु मस्तिष्क ने कृष्ण और बलदेव को पकड़ करके खींचा अखाड़े में। उस समय में कृष्ण और बलदेव जी कहते हैं, हम लोग तो अभी दूध मुंह हैं, बच्चे हैं, तुम लोग बड़े बड़े पहलवान हो, इसलिए हम अपने साथियों के साथ में लड़ेंगे या हम अपने समवयस्क से लड़ेंगे, आप लोगों से नहीं। किंतु उन्होंने जो पुतना को मारा, बकासुर अगासुर सबको मारा, वो बच्चा नहीं है, इसलिए कंस की प्रसन्नता के लिए हम लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे। फिर लड़ाई जब होने को आरंभ हुई उसी समय में जादवों की पत्नियां जो थी बड़ी भक्त थी, उन्हें घोर अधर्म हो रहा है, इस सभा में जो रहेगा उसको भी अधर्म लगेगा, इसलिए सभा में नहीं रहना अच्छा है। और देखो तो कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण और बलदेव कितने सुंदर हैं, गोपियां धन्य थी जो ब्रज में उनका दर्शन करती हैं, उनके साथ में रास रस आती हैं और हम लोग दुर्भागा कृष्ण को मारने के उद्देश्य से कंस इन असुरों पहलवानों को बुलाकर के इनको मरवाना चाहता है और ये लड़ रहे हैं, कृष्ण को मुख क्रोध से तम तमा रहा और बलदेव का, और गोपियां उनको मुस्कुराते हुए रासस्थल में नृत्य करते हुए उनको देख रही हैं। वर्णन करने लगी उनके रूप और ये सब को, इसका श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। एक उसका श्लोक संक्षेप में वर्णन करते हैं, इसके बाद में हम दूसरी तरफ में चलेंगे। क्या है ब्रजभुवो जदैन्य लिंग गुड़ा पुराण पुरुषा वन चित्र माल्य जापालय सबलम प्रणयंश वेणु विकीड़ियांचति गिरित्री रमार्चित। जो शंकर जी लक्ष्मी जी जिनकी चरणों को सबसे में पलोटते हैं और सेवा आराधना करते हैं, वो लोग भी कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। ब्रज में कृष्ण का दर्शन करना वो और वो बड़ा भारी मुश्किल है तीनों लोगों के लिए। ये दुष्कर आज वो वृंदावन में गाय पालन गायों को चराते हुए बलदेव के साथ में सखाओं के साथ में चरणों में अपने कितने प्रकार के चिन्ह लेकर के पृथ्वी पर घूम रहे हैं। और जगत का जितना निखिल सौंदर्य है इस कृष्ण में है। ब्रज के केवल सौभाग्यवान ब्रज नारी और ब्रज ही के लोग केवल उसका दर्शन कर सकते हैं। जो दोहने वाहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनाभिरुदितो ओखन मार्जनादो ओखन मार्ज गायंती चैन मनुरक्त धियो अश्रुकंठा धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्तम जान। ये गोपियां कैसी हैं, कृष्ण के चित्त के लिए ये रथ स्वरूप हैं, कृष्ण के चित्त के ऊपर में सब समय चढ़ी रहती हैं, अर्थात कृष्ण सब समय इनका स्मरण करते हैं। यही नहीं, ओ गोपियों के भी चित्त में ये कृष्ण चढ़ते हैं और कृष्ण के चित्त में ये गोपियां चढ़ी रहती हैं सब समय निरंतर एक विष्णु को स्मरण कर। जा दोहने वहने में दोहन काल में जब गोदोहन करती हैं तो गोपियां क्या करती हैं, गोविंद दामो धर्म धवेती गोविंद दामो धर्म धवेती गोविंद दामो धर्म धवेती गोविंद दामो धर्म धवेती। जब घर को लिपती पुत्ती हैं, लिपती पुत्ती हुई तो हाथ से तो करती हैं, किंतु गोविंद दामो धर्म धवेती गोविंद दामो धर्म। कोई सवेरे में सुखसारी को पढ़ा रही है, सवेरे उठ करके क्या पढ़ा रही है, गोविंद दामो धर्म धवेती गोविंद दामो धर्म धवेती। जसोदा जी दधि मंथन करते हुए अपने बच्चे का गुणगान करते हुए जे कैसा बच्चा सुंदर है ने? कैसे मक्खन इत्यादि चुराता उसका वर्णन करते हुए और ध्यान मस्त हो करके कहते गोविंद दामो धर्म धवेती गोविंद दामो धर्म धवेती। कोई पल्ले में अपने बच्चे को झुला रही है ना, और पल्ले में झुलाते हुए कर रही है, सो जाओ नहीं कहती, गोविंद दामो धर्म धवेती गोविंद दामो गोविंद दाम गोविंद दाम। कोई बच्चे को सुधा रही है, सो जाओ नहीं, गोविंद दाम धर्म धवेती गोविंद दाम धर्म। दिन रात उनकी ऐसे ही चिंता रहती है। आप लोग भी क्यों नहीं भगवान का नाम करते हुए चित्त में उनका स्मरण करते हैं, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं या कर सकती हैं, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जीवन का यही लक्ष्य बना कर दीजिए। इसके बाद में कहते हैं कि ये गोपियां जब कृष्ण गोचारण के लिए वन से निकल करके जाते हैं तो जाने के समय और जब वन से गायों को चरा करके आते हैं, निर्गम्य तूर्णम अबला पतिभूर पुण्य सस्मित मुखम सदयाव रूप, उस समय कृष्ण जब आ रहे हैं घर से जल्दी से निकल करके कुंजों में अटारियों पर जंगले के सामने दरवाजे के सामने निकल करके कृष्ण का दर्शन करने लगती है और अपने नैने से उनकी मंगल आरती उतारती हैं और कृष्ण भी हंसते हुए मुस्कुरा करके अपने नैनों से ही उनकी इस आरती को ग्रहण करते हैं। ये धन्य ब्रज की स्त्रियां हैं। उद्धव की तो बात क्या, गत वर्ष मैंने संक्षेप में कुछ कहा था, उद्धव ने जब गए कृष्ण ने उनको माता पिता के सांत्वना देने के लिए ऊपर से भेजा, किंतु बात ये नहीं थी। गोपियां परस्पर विरह में एक दूसरे से कृष्ण की चर्चा करके अपने भार दुख के भार को हल्का कर लेती थी, किंतु कृष्ण मथुरा में या द्वारका में किससे बातचीत करेंगे, कोई भी उनके पास में जो उनके दुख और दर्द को समझ सके कोई नहीं समझ पा। उद्धव को भेजा, किस लिए भेजा, उद्धव जाए वृंदावन में ब्रज में जाए, और जहां पर मैंने प्रेम की पाठशाला में मैंने शिक्षा ग्रहण की है प्रेम की, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा तो पंडित हो, ढाई अक्षर प्रेम है प र आधा म, जो इसको पढ़ लिया वो पंडित है, बाकी सब बेवकूफ है नहीं जानते। तो मैं भेजू उद्धव जाकर के गोपियों की पाठशाला में यूनिवर्सिटी में जाए और वहां पर पढ़ करके आए, प्रेम समझे ये प्रेम क्या है, तब उसे दो चार बातें कर सकूंगा, तब वो हमारी बात को समझेगा। इसलिए भेजा, उद्धव गए, किंतु प्रेम में उस कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं मिला। गोपियों ने देखा ये योग्य नहीं है, गोपियों ने पहले एग्जामिनेशन के तौर पर जब कोई जाता है एडमिशन के लिए तो उसकी परीक्षा लेते हैं कितने अंक से पास हुआ है, और उसके बाद में प्रश्न करता है फेल हो गया तो नहीं, 80% मार्क होना चाहिए तब होगा। तो उद्धव जी गए, पूछा उद्धव प्रेम किसको कहते हैं जानते हो, प्रेम दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थ युक्त प्रेम होता है और एक स्वार्थ रहित निस्वार्थ प्रेम होता है। कृष्ण के साथ में हमारा निस्वार्थ प्रेम था, उनसे कुछ भी हम लोगों ने नहीं चाहा, और कृष्ण का प्रेम भी निस्वार्थ ही था। तो उद्धव बतला सकते हो ये प्रेम कैसे छूट गया, टूटा क्यों, निस्वार्थ का प्रेम टूटना नहीं चाहिए, टूट कैसे गया। देखो और थोड़ा सा समझ करके उत्तर दो, स्वार्थ प्रेम कैसा होता है, कोई वेश्या धन के लिए अपने अटारी पर बैठ करके संगीत इत्यादि करती है और देखती है कि कोई आया धनवान, उसको पकड़ लेती है और जब तक कि उसका सारा पैसा नहीं ले ले तब तक प्रेम दिखलाती है, और जहां पैसा खत्म हो गया उसको दूधकार कर निकाल देती है। एक भौरा फूल पर जाता है, उसका फूल का रस ले लेता है और उसके बाद में दूसरे फूल पर बैठ जाता है, उसको भूल जाता है। एक भिक्षु किसी के घर में भिक्षा मांगने जाता है, भिक्षा मिल गई, पहले तो खूब कुछ कर रहा था, राधे 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 सब कर रहा, अच्छा भिक्षा दे दिया, बस एक मिनट ठहर जाओ महात्मा जी, समय नहीं हमको बहुत दूर जाना। पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने स्कूल कॉलेज में गया, पढ़ाई खत्म हो गई और गुरु को गुरु मानेगा, रहेगा उनकी सेवा करेगा, ओ खत्म हो गई पढ़ाई, बस हो गया। एक हिरण जंगल में रहता है, उसमें आग लग गई, बस हिरण दूसरे जंगल में चला जाएगा, वहां नहीं होगा। एक पेड़ है बरगद का, उसमें बहुत छाया और फल हैं, चिड़िया उसमें रहती है, और जब ही आग लग गई उस पेड़ पर, पत्ते सब जल फल गए, अब उस पेड़ पर नहीं रैन वो करेगी, रात नहीं बिताएगी, अब दूसरे पेड़ पर चली गई। उसी प्रकार से और भी बहुत से उदाहरण दिए, बतलाओ तो निस्वार्थ प्रेम किसी कारण के आने पर भी, प्रेम खत्म होने का कारण होने पर भी वो प्रेम बढ़ता जाता है। तो कृष्ण के साथ में हमारा जब ऐसा निस्वार्थमय प्रेम था कैसे टूट गया? उद्धव जी सुख खजुलाल लगे, उत्तर नहीं दे सके, एडमिशन नहीं हुआ, विद्यालय का भवन देखा, कुंज देखा, ये सब देखा, उनका गोष्ट देखा, किंतु एडमिशन नहीं हुआ। क्यों देखा? क्या प्रिंसिपल को देखा, राधा जी को देखा, उनके भाव को ऊपर से देखा। ललिता विशाखा जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स में है, इनके भावों को देखा, ग्रहण नहीं कर सके, एक तीर्ण भी ब्रज का नहीं बन सके, इसलिए फिर कृष्ण के पास में आए। तो कृष्ण से कुछ प्रेम की बातें हुई, उद्धव जी वहां से लौट करके आए, या वहां रहने पर भी क्या गोपियों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं? वो क्या है पहला श्लोक?
हाँ,
क्या
एता परम
तनुभितो भो गोपबद्धो गोविंद एव लिखलात्मा जी रूढ़ भावा वांछन्ति जद भव भी वो मुनयो वयंच क्रिम ब्रह्म जन्म अनंत कथा। ओ, हम लोग भी जिनके भावों को पाने के लिए, रूढ़ भावों को पाने के लिए ललचते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते, ये ब्रज की गोपियां धन्य है, इनका जन्म लेना सार्थक है। जो कृष्ण कैसे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वैश्वर्य माधुर्य पूर्ण है, उनके चरणों में उनकी ऐसी रूढ़ स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ भाव महा इत्यादि उनके हुए। हम लोग भी भाव भी भय से भी रहने वाले ये सभी लोग, और हम लोग भी नारद जैसे लोग उन गोपियों की चरण की धूलि की इच्छा करते हैं। अंत में बतलाया आशा महो रेणु जुषा महम श्याम वृंदावनम किमपौषधीना जा दुस्तजन स्वजन आज पथंज भूत्वा भेजे मुकुंद पदवी। वेदियों वेदों के लिए भी, वेद की सूतियों के लिए भी जो कि अन्वेषणीय आज तक भी वो नहीं पाई, इन गोपियों की धूलि मैं बनना चाहता हूं, जिसके जिसके वजह से वो वृंदावन में कौन कुंड उद्धव कुंड में घास बने हैं, जो गोपियां अभिषेक के समय जाएंगी उनकी चरणों की धूलि उनके सिर पर लगेगी, जो लक्ष्मी इत्यादि के लिए दूसरे लोगों के लिए ये असंभव है। और अंत में कहते हैं जावई सियाचित अजो अजाद भी आप्त कामई जोगैश्वरी रपी जोगैश्वरी रपी सदात्मनि रास गोष्ठ्यम कृष्ण सतत भगवत चरणारविंदम नस्तम तनेशु विजहो परिरभ्यता। गोपियां धन्य है, यह सौभाग्य किसी को नहीं हुई। ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी इत्यादि जिनका ध्यान करते हैं शिव निरंतर ध्यान में नहीं आते, और उनके इन चरण कमलों को गोपियां कृष्ण के चरणों को अपने प्रस्ताव पर रखते हुए डरती हैं, कहीं कृष्ण का सुकोमल चरण में कहीं कठोरपन तो न लग जाए, और अपने चरणों पर संतरण करती। ये गोपियों की महिमा कितनी है, इसलिए बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणुम अभिक्षण सहजा सांहरि कथोद्वैत पुनः दुखोन त्रयम। इन गोपियों की चरण धूली की मैं वंदना करता, एक धूली की। ये धूली किसकी होगी आप समझ सकते हैं, जब एक धूली की वंदना करना चाहते हैं तो राधा जी के ही चरण की धूली की वंदना करेंगे। जिससे समस्त विश्व उनकी हरि कथाओं से जो भ्रमर गीत इत्यादि है सारा विश्व तृप्त हो जाता है, ऐसी इनकी कथा है। इसलिए अरध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या का चुतुपासना बजु बधु बर्गे न जा कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण मलम आपमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः परम। समस्त आराधनाओं में भाई कृष्ण की आराधना है, श्रेष्ठ है। वृंदावन के अतिरिक्त ये कहीं नहीं लीला, इसलिए वृंदावन को भी नमस्कार है। किंतु कृष्ण की जो आराधना है सर्वोत्तम, वो गोपियों की ही आराधना है। गोपियों ने जिस प्रकार से आराधना उपपति भाव से की है, ऐसा कोई भी नहीं का, रुक्मिणी सत्यभामा भी नहीं, लक्ष्मी की तो बात ही क्या है। इसलिए ये आराधना सर्वश्रेष्ठ, और इस विषय में श्रीमद् भागवत ही अमल प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु का यही विचार है, इसलिए गोपियों के अनुगत्य में हमारे रूप गोस्वामी ने मंजरी भाव को जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। इससे बढ़कर के कोई भी जीवों के लिए और भाव नहीं है, यही कह करके आज हम वक्तव्य अपना समाप्त करते हैं और अगले वर्ष के लिए प्रतीक्षा करेंगे। और कीर्तन के बाद में सभी हमारे ब्रह्मचारी लोग अभी चले जाएंगे और अगले वर्ष के लिए देखा जाएगा। गौ प्रेमानंदे।